सबका प्यार पाकर आस्था की आंखें बार बार भर रही थीं। तब अचानक आस्था ने रश्मि का हाथ पकड़ा और बोली, रश्मि दीदी, हम आपको बहुत याद करेंगे। तब रश्मि बोली, हेलो, तुम सिर्फ इस घर से जा रही हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं टूट रहा है, और वैसे भी तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन माना है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो, समझे तुम? और भले ही तुम सिंघानिया मेंशन से जा रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी से नहीं। तुम्हारा जब दिल करेगा हम मिलेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। और हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, बस तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। इस बार के जो एडमिशन ओपन होने वाले हैं, मैंने उनमें तुम्हारा नाम भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है? अब तुम अपने डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा कर सकती हो। जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी और खुश होते हुए कहने लगी, सच में रश्मि दीदी, आपने हमारे लिए कॉलेज में एडमिशन किया है? लेकिन रश्मि दीदी, वहाँ पर तो काफ़ी सारा डोनेशन जमा करना होता है, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे, और फिर हम आपको पैसे कैसे दे पाएंगे? तब रश्मि थोड़ा सा मुंह फूलते हुए आस्था की ओर देखकर बोली, लगता है तुमने मुझे मन से अपनी बहन नहीं माना है, इसीलिए तुम इस तरह से फीस वगैरह की फ़िक्र कर रही हो। पैसे डोनेशन में सबको जमा कर चुकी हूँ, तुम्हें किसी तरह की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी आस्था बोली, लेकिन रश्मि दीदी, भला हम कैसे? आस्था को रोकते हुए रश्मि ने आस्था का हाथ पकड़ा और बोली, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती? और बड़ी बहन छोटी बहन का एडमिशन करा सकती है, और अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम पर किसी तरह का कोई एहसान किया है या कुछ भी, तो तुम मुझे वो सारे पैसे डॉक्टर बनने के बाद रिटर्न कर देना, वेरी सिंपल। जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आस्था की आंखों से आंसू आ गए थे। उसने फटाफट से उठकर रश्मि को गले से लगा लिया और बोली, आप बहुत अच्छी हैं दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने तो हमारी कितनी सारी परेशानी दूर कर दी। ऐसा लगता है कि कान्हा जी ने एक ही बार में हमारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी है, तभी तो उस राक्षस को हमारी जिंदगी से निकाल दिया। साथ ही साथ हम अब इस घर से भी जा रहे हैं और अपनी नानी माँ के पास रहेंगे और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, कुछ भी नहीं। आस्था रोते रोते भी हल्का सा मुस्कुरा दी। तब डॉक्टर रश्मि ने आस्था को संभाला, उसे खाना खिलाने के बाद उसने उसे दवाइयाँ दी। दवाइयाँ खाकर आस्था एक बार फिर गहरी नींद में सो गई थी। आस्था को सोते हुए देखकर दादाजी डॉक्टर रश्मि के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बच्ची की तुमने सारी बात संभाल ली। हम अच्छी तरह से जानते थे कि आस्था हमसे किसी तरह का कोई फेवर नहीं लेगी, लेकिन तुमने जिस तरह से आस्था की एडमिशन की बातें उसे बताई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, और आस्था को इस बात का भी शक नहीं हुआ कि उसका एडमिशन हमने ही करवाया है। तब डॉक्टर रश्मि बोली, दादाजी, अगर आप आस्था का एडमिशन भी नहीं करवाते, तब भी मैं आस्था के लिए यही करने वाली थी। और डोंट वरी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आस्था का ख्याल रखूंगी और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करूंगी। ऐसा बोलने के बाद रश्मि मुस्कुराती हुई बोली, अब मैं अपने कपड़े पैक करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आस्था के जाने के बाद मैं भी सिंघानिया मेंशन छोड़ दूंगी। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, दादाजी का चेहरा एक बार फिर उतर गया था और वो बोले, हमने तो सोचा था कि हमारे घर में अब सिर्फ रौनक ही रौनक होगी, लेकिन अब तो पूरा का पूरा घर हमें काटने को दौड़ रहा है। हमने भी ठान लिया है, आप दोनों के जाने के बाद हम अपनी बाकी की जिंदगी अब अपने पुश्तैनी गांव में जाकर बिताएंगे। ऐसे कहकर दादाजी भी इमोशनल होते हुए वहां से चले गए थे। कहीं ना कहीं रश्मि को दादाजी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी वहां किस वजह से रहती? वो सिर्फ और सिर्फ आस्था के लिए वहां आई थी, और अब क्योंकि आस्था ही वहां से जा रही है, तो उसका वहां रुके रहने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए डॉक्टर रश्मि ने भी वहां से जाने का डिसीजन ले लिया था और अब वो अपने बैग पैक करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सुमित और आकाश सीधा फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। आकाश को फोन पर किसी और का नहीं बल्कि अरमान यानी डेविल किंग के बॉडीगार्ड टाइगर का फोन आया था। टाइगर एकदम लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी था, शक्ल में इतना मासूम और हैंडसम, लेकिन सीरत से एकदम भयानक और खतरनाक, और इतना खतरनाक कि डेविल किंग के इशारे पर खड़े खड़े वो आदमियों की जान ले लिया करता था। जैसे किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, अकेला ही वो 100 लोगों पर भारी था। एकदम बॉडी बिल्डर टाइप टाइगर उस वक्त वहां मौजूद था। अगर आप लोग फाइट्स वगैरह देखते हो, उन्हीं में से एक फाइटर है, रोमन रेंस, उसी टाइप का था। टाइगर के लंबे बाल और एकदम रोमन रेंस जैसा लुक उसका बड़ा ही डेंजरस था। टाइगर जो कि अरमान के इशारे पर किसी की जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था। अब सुमित और आकाश जैसे ही वहां गए, उनका सामना सीधा टाइगर से हुआ। उस वक्त टाइगर का चेहरा एकदम सपाट था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थीं। तभी आकाश बोला, कहाँ है अरमान? तब टाइगर ने तहखाने की ओर इशारा कर दिया। टाइगर और सुमित और आकाश के ठीक पीछे पीछे वो भी पहुंच चुका था, क्योंकि अरमान को इस तरह से दर्द में देखकर टाइगर आग बबूला हो उठा था और उसने आकाश से कहा, आकाश ब्रो, इस वक्त मुझे बहुत प्यास लगी है, किंग की ऐसी हालत में देखा नहीं पा रहा हूँ। टाइगर अरमान को किंग कहकर पुकारा करता था, और जब तक मेरी प्यास शांत नहीं होगी मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। टाइगर ने जैसे ही थोड़े से डीप वॉइस में ये कहा, आकाश ने अपने सर पर हाथ मार लिया था। वो समझ चुका था कि अगर टाइगर को प्यास लगी है तो ना जाने कितनों का खून पीकर उसे शांति मिलने वाली थी। तभी सुमित ने टाइगर को एक पर्चा थमा दिया और उससे बोला, इस एड्रेस पर जाओ, यहाँ तुम्हें पीने के लिए काफी खून मिलेगा। ऐसा बोलकर सुमित ने टाइगर को वहां से रवाना कर दिया था। सुमित ने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस किसी और का नहीं, बल्कि शहर में एक जगह जहाँ कितने ही छोटे छोटे मासूम बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। वो गैंग बच्चों को मारपीट कर, इतना ही नहीं किसी बच्चे की टांगों को तोड़कर या उनके हाथों को तोड़कर, काटकर, आंखों को फोड़कर भी भीख मंगवाया करता था। सुमित को रिसेंटली ही उस गैंग के बारे में पता चला था। सुमित खुद जाकर उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन दिन उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था तो इसीलिए वो वहां नहीं जा पाया, और फिर घर में इतना कुछ हो गया कि उसे मौका नहीं मिला। लेकिन आज जब टाइगर ने प्यास की बात बोली तब सुमित ने उसके हाथ में उस जगह का एड्रेस थमा दिया जिसकी पूरी डिटेल्स उस पेपर्स में थी। तब टाइगर तिरछा सा मुस्कुराता हुआ पेपर लेकर एक सर्द भरी नजर अरमान सिंघानिया पर डालता हुआ वहां से चला गया था। उस वक्त अरमान का पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था, उसने अपने आप को हद से ज्यादा हर्ट किया था। अरमान को इस कदर तकलीफ में देखकर सुमित और आकाश दोनों ही काफी ज्यादा दर्द में थे, क्योंकि अरमान को इस तरह से भी नहीं देख सकते थे। तभी डॉक्टर की टीम वहां आई। आकाश ने उनसे अरमान की कंडीशन के बारे में पूछा कि अरमान को कब तक होश आएगा। तब डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया था कि इस बार बॉस ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही हर्ट किया है, इसीलिए इन्हें होश में आने में कम से कम अभी 2 से 3 दिन का टाइम लगने वाला है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत बेटर हो पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद आकाश ने डॉक्टर से बोल दिया कि वो उसका पूरा का पूरा ख्याल रखेगा। तभी सुमित बोला, तुम्हें अरमान की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और मेंशन के जो हालात हैं उन्हें संभालो, मैं हूँ यहाँ, मैं उसके पास ही रुकूंगा।
ऐसे बोलकर सुमित ने आकाश को वहां से जाने को कन्विंस कर दिया था। तब आकाश भी सुमित के कंधे पर हाथ रखता हुआ वहां से निकल गया। इस वक्त आकाश के दिल में पूरी तरह से तूफान मचा हुआ था, और फिर अचानक आकाश, जो कि उस वक्त एक गहरी सोच में था, उसने अपनी कार के ब्रेक मार दिए थे। उसने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा, पूरी की पूरी सड़क उस वक्त सुनसान थी। तब आकाश ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला था और जोरों से चीखा। आकाश के दिल में एक अलग ही तरह का तूफान बढ़ रहा था। बार बार उसे ये भी याद आ रहा था, जिस तरह से वो रश्मि के करीब गया था, उसने उसे ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश की थी लेकिन रश्मि ने उसका हाथ झटक दिया था। आज आकाश को 3 साल पहले की वो बात याद आ गई थी। फ्लैशबैक। आकाश इसी तरह से ड्राइव करते हुए इमरजेंसी में कहीं जा रहा था। ठीक उसी वक्त उसकी कार के सामने स्कूटी पर एक लड़की टकरा गई थी। किसी लड़की के अचानक अपनी गाड़ी के सामने आ जाने पर आकाश का पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। गुस्से से तमतमाते हुए वो अपनी गाड़ी से उतरा था, क्योंकि उसे तो ये लगा था कि कोई ना कोई लड़की जानबूझकर उसके सामने आई है, क्योंकि आकाश के साथ ये हमेशा होता रहता था। आकाश की परफेक्ट पर्सनैलिटी और उसकी स्मार्टनेस को देखकर हर कोई लड़की हर दूसरे तीसरे दिन आकाश को प्रपोज कर दिया करती थी, तो आकाश इसे काफी ज्यादा चिड़चिड़ासा हो गया था। अब किसी लड़की को अपने सामने देखकर आकाश को और भी गुस्सा आया था, और उसने उसकी ओर देखकर उसे डांटना शुरू कर दिया था। वहीं डॉक्टर रश्मि कुछ देर तो आकाश को देखती रही, क्योंकि डॉक्टर रश्मि आकाश को हमेशा अपने सपनों में ही देखा करती थी। लेकिन अपनी आंखों के सामने आज आकाश को देखने के बाद डॉक्टर रश्मि बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और बिना सोचे समझे पहले ही मुलाकात में उसने आकाश को जोरों से गले से लगा लिया था और उछलने लगी थी। अब डॉक्टर रश्मि का ऐसा चिपकू बर्ताव देखकर आकाश के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि उसे ऐसे चिपकू लड़कियां बेहद नागवार लगती थीं। उसे बहुत ज्यादा इस तरह की चिपकू लड़कियों से चिढ़ हुआ करती थीं। लेकिन डॉक्टर रश्मि तो आकाश के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी मानो कि आकाश उसका जन्म जन्मों का साथी था और उसे बड़े दिनों के बाद मिला था। वो उसे इस तरह से बात कर रही थी जबकि आकाश ने डॉक्टर रश्मि को उस वक्त पहली बार देखा था। एकदम दुबली पतली सी लड़की, सिंपल सूट डाले हुए, लंबे गहरे घने बाल, छोटी छोटी सी नाक, बड़े प्यारे खूबसूरत से होंठ, सात टमाटर जैसे एकदम लाल गाल, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे, और एकदम बड़ी बड़ी झील सी आंखें। आकाश कितनी देर तक पहले तो डॉक्टर रश्मि को ऑब्जर्व करता रहा था, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर रश्मि ने आकाश को अपने सामने देखते ही आकाश से ढेर सारी बातें सुनाना शुरू कर दिया था। अब आकाश डॉक्टर रश्मि की उठपटांग बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान था। एक तो वो इस बात से काफी ज्यादा चढ़ा हुआ था कि इस लड़की ने पहली मुलाकात में ही उसे गले से लगा लिया, वो उसके गले ही पड़ गई और उसके बाद वो अपनी उठपटांग बातें करने लगी थी, जैसे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, कम से कम मुझे बता तो देते, तुम कहाँ गए थे। ऐसा बोलकर डॉक्टर रश्मि आकाश से ढेर सारे सवाल करने लगी थी। आकाश को देखते ही फर्स्ट मीटिंग में ही रश्मि आकाश पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। तब आकाश उस लड़की की इस तरह की बातें सुनकर जोरों से चिल्लाकर बोला था, हाउ डेयर यू, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से सवाल करने की और ये तहकीकात करने की कि मैं कहां से आ रहा हूं। तुम क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो जो मुझे इस तरह से सवाल कर रही हो कि मैं कहां से आ रहा हूं, कहां से नहीं आ रहा हूं, मैं क्यों जवाब दूं तुम्हें, हो कौन तुम। तब डॉक्टर लक्ष्मी थोड़ा सा शर्माते हुए बोली थी, बिल्कुल मैं तुम्हें पहले से जानती हूं, तुम तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार के जैसे हो, आई रियली लव यू। और पहली मीटिंग में रश्मि ने उसे देखते ही उसे प्रपोज कर दिया था और बोली, जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने खड़े खड़े उसी के मुंह पर उसे आई लव यू बोला और उसे ये बोला कि वो उसके सपनों का राजकुमार है, आकाश तो पूरी तरह से शॉक हो गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे वो डॉक्टर रश्मि से किसी तरह का कोई सवाल कर सके और डॉक्टर रश्मि उसकी इस हालत का मजा लेते हुए जल्दी ही रश्मि मुस्कुराते हुए स्कूटी पर आकाश के सामने से ही निकल गई थी और आकाश रश्मि की बातों में ही उलझ गया और रश्मि की बातों को नजरअंदाज करके अपना सर झटक कर लेकर वहां से निकल गया। बाद में फिर रश्मि से दूसरी मुलाकात उसी के अनाथाश्रम में हुई। आकाश उसे वहां देखकर चौंक गया था। जब आकाश दादाजी के साथ अनाथाश्रम में गया था वहीं पर रश्मि की उसकी दूसरी मुलाकात हुई थी। दादाजी रश्मि को अच्छी तरह से जानते थे लेकिन आकाश पहली बार दादाजी के साथ वहां आया था। आकाश को दादाजी के साथ देखकर रश्मि बहुत खुश हो गई थी और जब उन्हें अकेले में थोड़ा सा टाइम मिला था तब रश्मि ने एक बार फिर आकाश को शर्माते हुए प्रपोज कर दिया था। दोस्तों ज्यादा स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग डेस्परेटली आस्था और अरमान के चैप्टर देखना चाहते हैं लेकिन कुछ दिन अरमान को तड़पने दो, उसका ऑब्सेशन बढ़ने दो, उसके बाद आपको जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है स्टोरी की अब असली शुरुआत ही।